नमस्कार भारत, आज है 17 अक्टूबर दिन मंगलवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। कुर्दों के नियंत्रण वाले किरकुक शहर पर इराकी सेना के प्रवेश के बाद भारी संख्या में नागरिकों का पलायन, अमेरिका ने की शांति की अपील। गुजरात गौरव महासम्मेलन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस विकास विरोधी हो गई है।
सोशल मीडिया में जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी का मखौल उड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग गुजरात की जमीन में दिख रही है।
सुनिएगा खास रिपोर्ट झरिया के खदानों पर, जहां जिंदगी कोयले की भेंट चढ़ती जा रही है।
जमीन कटरा रहा था तो हम लोग खा बना रहे थे, सबको खिलाए पिलाए, देखा जमीन को इधर दराई फट रहा है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। इराक के सरकारी सैन्य बलों के किरकुक शहर और आसपास के तेल उत्पादन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लेने के बाद अमेरिका ने इराक और कुर्दों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस लड़ाई में अमेरिका किसी का पक्ष नहीं लेगा। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हैथर नोवर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों को झड़प रोकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट को पूरी तरह से हराने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और इराक और कुर्दों के बीच तनाव अहम अभियान से ध्यान भटका देगा। इराक के सरकारी सैन्य बलों ने सोमवार को किरकुक शहर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुर्दिस्तान के आजादी के समर्थन में जनमत संग्रह करने के एक महीने के भीतर इराक ने विवादित शहर किरकुक पर यह नियंत्रण किया है। स्पेन की एक उच्च अदालत के कैटालोनिया की आज़ादी के समर्थक दो नेताओं को हिरासत में लेने का आदेश देने के बाद बार्सिलोना में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। जोर्डी सांसेज और जोर्डी स्विजार्ड को जेल भेजे जाने के बाद बार्सिलोना में लोगों ने सड़कों पर गमले फेंक कर और गाड़ियों के हॉर्न बजाकर विरोध दर्ज करवाया है। अभियोजकों का कहना है कि दोनों नेताओं ने कैटालोनिया में आज़ादी के लिए कराए गए जनमत संग्रह के आयोजन में अहम भूमिका निभाई थी। स्पेन की सरकार ने जनमत संग्रह को अवैध करार दिया है। दोनों नेताओं की पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं से मंगलवार को काम रोक देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कैटालोनिया के नेता अगस्तो अल्कोबेरो ने कहा,
Como entidades entendemos que este juicio ha tenido muchas contaminaciones políticas.
हमारी समझ में ये आ रहा है कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है और स्पेन की न्यायिक स्वतंत्रता पर शक पैदा करता है। हम ये भी समझते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, इकट्ठा होने की आज़ादी और राय व्यक्त करने की आज़ादी जैसी आज़ादियों और मूल अधिकारों पर भी सवाल उठाता है। माल्टा में एक शक्तिशाली कार बम धमाके में एक महिला पत्रकार की मौत के बाद कई हजार लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। डैफने कारुआना गालिजिया एक खोजी पत्रकार थीं जिन्होंने माल्टा के प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं पर कथित भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया था। प्रधानमंत्री ने सभी आरोपों को खारिज किया है। गालिजिया की श्रद्धांजलि सभा में कई नेता और नामी लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने हत्या की आलोचना की है। गालिजिया के एक पारिवारिक दोस्त ल्यूक फ्रेंडो ने उनकी मौत को त्रासदी बताते हुए कहा,
दिस इज अनडाउटेडली अ डार्क एंड सैड 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 डे फॉर मोर।
आज का दिन माल्टा के लिए एक काला और बेहद दुखद दिन है। ये मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन है जो मैंने देखा है। माल्टा के एक नागरिक के तौर पर मैं कहूंगा कि गालिजिया सिर्फ निडर पत्रकार ही नहीं थी, बल्कि माल्टा के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ थी। आज हुई ये नृशंस हत्या सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, एक पत्रकार के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि ये माल्टा के लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। अमरीका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज बल का कहना है कि इस्लामिक स्टेट का गढ़ रहा रक्का अब उसके नियंत्रण में है। एसडीएफ के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के चंद दर्जन लड़ाके ही शहर में बचे हैं जो नेशनल हॉस्पिटल और स्टेडियम के पास के इलाके में सीमित हैं। रिपोर्टों के मुताबिक शहर में लड़ाई अब रुक गई है और एसडीएफ के लड़ाकों ने नईम चौक पर नियंत्रण कर लिया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। तेल समृद्ध विवादित क्षेत्र किरकुक का नियंत्रण इराक की सेनाओं ने अपने हाथ में ले लिया है। 2014 में उत्तरी इराक के बड़े इलाके पर तथाकथित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट का नियंत्रण हो जाने के बाद कुर्द लड़ाकों ने किरकुक पर नियंत्रण कर लिया था। बीते महीने कुर्दिस्तान में स्वायत्तता को लेकर कराए गए विवादित जनमत संग्रह के बाद से किरकुक को लेकर इराक की केंद्रीय सरकार और कुर्दिस्तान की स्वायत्त प्रांतीय सरकार के बीच विवाद था, लेकिन अब इराकी सेनाएं शहर में दाखिल हो गई हैं और बड़ी संख्या में वहां से कुर्द नागरिकों का पलायन हो रहा है। इस बीच अमेरिका ने वहां शांति कायम करने की अपील की है। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
कुर्दों के नियंत्रण वाले विवादित शहर किरकुक के बाहरी इलाकों में कुर्द लड़ाकों से अहम सैन्य और तेल प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद इराक के सरकारी सैन्य बल किरकुक शहर के केंद्रीय इलाकों तक पहुंच गए हैं। एक ओर जहां इराकी सैन्य बल किरकुक की ओर बढ़ रहे थे, वहीं हजारों नागरिक शहर छोड़कर भाग रहे थे। शहर में दाखिल होने से पहले इराकी सेना ने किरकुक के बाहर अहम सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे और तेल उत्पादन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। रिपोर्टों के मुताबिक कुर्द लड़ाके बिना लड़े ही पीछे हट गए हैं, जबकि किरकुक के कुछ इलाकों में तोपे दागे जाने और गोलीबारी की आवाजें सुनी गई हैं। इराकी सेना ने किरकुक के प्रशासनिक भवन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और कुर्दिस्तान का झंडा उतार दिया गया है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने विवादित क्षेत्रों की प्रशासनिक इमारतों पर इराक का झंडा फहराने का आदेश सैन्य बलों को दिया है। इराकी सेना कुर्दिस्तान में स्वतंत्रता के लिए कराए गए विवादित जनमत संग्रह के 3 सप्ताह बाद किरकुक पहुंची है। इस जनमत संग्रह में कुर्दिस्तान के लोगों ने स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने के लिए वोट दिया था, जिसके बाद से इराक की केंद्रीय सरकार और कुर्दिस्तान की स्वायत्त प्रांतीय सरकार के बीच विवाद बढ़ गया था। इराकी सैन्य बलों के कुर्द, अरब और तुर्क मूल की मिश्रित आबादी वाले किरकुक शहर पहुंचने पर जहां बहुत से लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो हथियार उठा रहे हैं। ऐसे ही एक किरकुक वासी का कहना था। हम किरकुक के नागरिक अपने खून की आखिरी बूंद तक अपने शहर को बचाने के लिए लड़ेंगे। हम में जब तक जान है तब तक लड़ेंगे और शिया लड़ाकों को किरकुक में घुसने से रोकेंगे। किरकुक में इराकी सेना की कार्रवाई का जहां तुर्की और ईरान ने समर्थन किया है, वहीं अमेरिका का कहना है कि वो इस संघर्ष में किसी पक्ष के साथ खड़ा नहीं होगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
Let me tell you, we've had for many years very good relationship with the Kurds, as you know, and we've also been on the side of Iraq.
मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं कि कई सालों से हमारे कुर्दों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और हम इराक के पक्ष में भी खड़े हैं, भले ही हमें इराक में जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, हमें वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। वो आपस में लड़ रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस लड़ाई में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। 2014 में उत्तरी इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेने वाले तथाकथित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मिलकर लड़ रहे इराकी और कुर्द लड़ाकों के आमने सामने आने की स्थिति में चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो सकती है।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। गुजरात में चुनावी सरगर्मियों के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में गुजरात गौरव महासम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये महासम्मेलन पिछले 15 दिन से चल रही गुजरात गौरव यात्रा के समापन के तौर पर आयोजित किया गया था। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पर जुबानी हमले किए और प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान को मैं विकास हूँ, मैं गुजरात हूँ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि ये वंशवाद और विकासवाद की लड़ाई है और कांग्रेस विकास की विरोधी है और गुजरात की भी विरोधी है। हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ने गुजरात में वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट से संपर्क किया और सबसे पहले यही पूछा कि चुनावी संदर्भ में प्रधानमंत्री के भाषण के क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं।
सबसे पहले तो मोदी जी ने अपनी स्पीच में ओवरऑल उनका टोन जो था वो काफी अग्रेसिव था, है ना, और उन्होंने पहली बार गुजरात में विकासवाद बनाम वंशवाद के ऊपर बात की। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू की जम के टीका की और कहा कि कांग्रेस तो पैदा इसी ही गुजरात के विकास के विरोध में है। गुजरात में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा जो है 3 से 4 बार बदला है। सबसे पहला उनका जो चुनाव का जो कैंपेन था वो शुरू हुआ था कि गुजरात में कांग्रेस नहीं चाहिए, फिर बाद में सबने जब टीका की कि ये नकारात्मक कैंपेन है इसलिए फिर गर्जे गुजरात करके दूसरा कैंपेन आया था। उसके बाद उसका भी ट्विटर पे काफी मजाक होने लगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने अड़ीखम गुजरात कहा। और अब नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में जो टोन उन्होंने सेट किया वो उनका विकासवाद वर्सेस वंशवाद था। ओवरऑल उनका टोन काफी एग्रेसिव था, लेकिन जब जीएसटी का मामला आया तो जीएसटी के इश्यू पे नरेंद्र भाई जो थे थोड़े डिफेंस में थे, और उनका ये कहना था उसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार को बदनाम नहीं करना चाहिए और ये कांग्रेस की सरकार भी इसमें सम्मिलित है। उन्होंने अपने व्यापारियों को अपने साथ लेने की कोशिश की और ये कहा कि जीएसटी आपको तंग करने के लिए नहीं है, जीएसटी हिंदुस्तान के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा को गुजरात, सरदार पटेल और जनसंघ पसंद नहीं था, तो एक तरह से उन्होंने गुजरात बनाम कांग्रेस की एक बहस बनाने की कोशिश की, सरदार पटेल और मोरारजी देसाई।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना की, इन्होंने कहा सरदार पटेल के साथ अन्याय किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस ने मणिबहन पटेल के साथ अन्याय किया था, कांग्रेस ने मोरारजी भाई देसाई के साथ अन्याय किया, कांग्रेस ने बाबूभाई जसभाई पटेल के साथ अन्याय किया, और यहाँ तक नरेंद्र भाई कहते गए कि माधोसी भाई सोलंकी जो गुजरात के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनके अंडर में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 149 सीट्स मिली है, उनको भी सोनिया गांधी ने बोफोर्स वाले मामले में इस्तीफा ले लिया, ऐसा कह के मोदी जी ने ये कहने की कोशिश की कि गुजरात का कोई भी नेता होता है उसको कांग्रेस अन्याय करती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात का कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, चाहे वो नर्मदा योजना हो या पालीताना में डैम बनाने की कोशिश करे, तो केंद्र सरकार जो है उसकी परमिशन नहीं देता। इसका मतलब उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है वो गुजरात विरोधी है।
यही समझना चाहता था सर कि तथ्यात्मक तौर पर क्या ये बात यकीन के काबिल है कम से कम गुजरात की जनता के लिए कि गुजरात बनाम गुजरात एक तरफ है और कांग्रेस एक तरफ है।
देखिए, गुजरात में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जमीन न्यूज में, सोशल मीडिया में जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी का मखौल उड़ रहा है, मजाक आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग जो है वो गुजरात की जमीन में दिख रही है। खुद प्राइम मिनिस्टर 3 बार एक महीने में किसी एक स्टेट में आ रहे हैं और 22-23 तारीख को वापस आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इस बार चुनाव जो है वो काफी चैलेंजिंग लग रहा है और इसलिए भाजपा जो है वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार अजय उम्मट। और अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों के साथ दिलनवाज पाशा स्टूडियो में मौजूद हैं। दिलनवाज, गुजरात गौरव महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को अखबारों ने कैसी जगह दी है?
जी, सभी अखबारों ने वंशवाद हारेगा, विकासवाद जीतेगा इसी तरीके की सुर्खी लगाई है और लगभग सभी अखबारों ने एक जैसी सुर्खी इसमें लगाई है। नरेंद्र मोदी ने कल जो ये नारा दिया था गुजरात चुनाव में, इसके अलावा एक और खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, तलवार दंपति जेल से रिहा हो गए हैं, डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार, और उनकी जेल से बाहर आते हुए हाथ में अपने बैग लिए तस्वीर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छपी है। दैनिक भास्कर ने बताया है 2 अदालतों में सुनवाई, 1417 दिन जेल में रहने के बाद राजेश और नुपुर रिहा हुए और दोनों ने जेल में करीब 99,000 रुपये कमाए हैं, जिनको ये दोनों जेल में जो बंद कैदी हैं उनके कल्याण के कामों के लिए दान करके आए हैं। इसके अलावा एक और खबर है, नजीब जो JNU के छात्र थे 1 साल पहले लापता हुए थे, CBI उनको खोजने में अभी तक नाकामयाब रही है, इसकी जांच CBI कर रही है और कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट में CBI को फटकार लगाई गई है, ये पंजाब केसरी बता रहा है। और कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, नजीब की जो माँ है फातिमा नफीस, पुलिस ने किस तरीके से उन्हें धरना वो दे रही थी हाईकोर्ट के बाहर उठाया, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर कल काफ़ी शेयर की जा रही थी। इसके अलावा गुजरात के एक जैन मुनि हैं जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, ये खबर कई दिनों से सुर्खियों में थी और अब दैनिक भास्कर ने पीड़िता के हवाले से बताया है कि जैन मुनि सुख शांति के बहाने व्हाट्सएप पर अश्लील तस्वीरें मुझसे मंगा ली थी और उसके बाद दबाव बनाकर बलात्कार किया। ये पीड़िता का बयान जो है दैनिक भास्कर अखबार ने छापा है, हालांकि जो ये जिन पर आरोप लगा है उन्होंने कहा है कि ये संबंध जो है सहमति से बने थे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ये कहा है कि जो IAS अधिकारी हैं वो उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस वजह से वो विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और ये खबर आज कई अखबारों में पहले पन्ने पर है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या में राज्य सरकार की ओर से दिवाली उत्सव मनाने और भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना को लेकर राज्य सरकार जहां तैयारियों में लगी है, वहीं इस आयोजन को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। सरकार इस कार्यक्रम को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने से जोड़ रही है, वहीं विश्लेषकों का कहना है कि सरकारी धन से धार्मिक आयोजन करना संविधान का उल्लंघन है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
कहा जाता है कि दिवाली को ही भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे और उस खुशी में पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। यह संयोग ही है कि 90 के दशक में अयोध्या मुद्दे की राजनीतिक गर्माहट के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने वाली भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता से जब बेदखल हुई तो उसे भी सत्ता में वापसी करने में 14 साल लग गए। इसीलिए शायद राज्य की बीजेपी सरकार भगवान राम की वापसी और सरकार की वापसी दोनों का जश्न एक साथ मनाने की तैयारी कर रही है। कार्यक्रम को राज्य सरकार के कई विभाग मिलकर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने बीबीसी को बताया,
काफी कुछ खर्च जो है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे हैं, कुछ अब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो पीडब्ल्यूडी उससे करा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर जो है कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं जैसे दीये के लिए बाकी चीजों के लिए।
इस मौके पर दीपोत्सव कार्यक्रम में 1,71,000 मिट्टी के दिए जहां सरयू नदी के तट को रोशन करेंगे, वहीं दिन में निकलने वाली भगवान राम की शोभा यात्रा की अगवानी खुद मुख्यमंत्री करेंगे। उनके साथ उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री भी होंगे। शोभा यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी ताकि लोगों को पुष्पक विमान का भी एहसास कराया जा सके। राज्य सरकार का कहना है कि अयोध्या को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए ये सारी कवायद हो रही है, लेकिन अयोध्या में इतनी दिलचस्पी और सदाशयता को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल भी उठ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के अलावा अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में प्रमुख पैरवीकार और हाईकोर्ट के वकील जफर याब जिलानी कहते हैं कि ये सब न सिर्फ करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग है बल्कि संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता।
संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि किसी भी मजहब के लिए कोई ऐसा काम किया जाए जो मजहब के प्रमोशन में आता हो। टूरिस्ट के आने के लिए कोई खर्चा करेंगे आप, वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिशिबल है, लेकिन आप वहाँ पर चिरागा करें नहीं है।
वहीं जानकारों का कहना है कि इतने भव्य आयोजन के माध्यम से बीजेपी एक खास संदेश देना चाहती है। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता आयरन कहती हैं,
जो कल्याण सिंह जी थे चीफ मिनिस्टर, डेमोलिशन से पहले टूरिज्म के नाम से भी बड़े काम हुए थे, तब भी हुए थे वहाँ पे, तो इस समय एक गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर कट है कि उनका एक धार्मिक एजेंडा है।
बहरहाल आलोचक इसे भले ही धार्मिक आयोजन बताकर इसके पीछे राजनीतिक मकसद देख रहे हों, लेकिन सरकार इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम ही मान रही है और उसे विश्वास है कि इसके जरिए अयोध्या में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
झारखंड के सिमडेगा जिले में एक बच्ची की मौत के बाद राज्य की रघुवर दास सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उस बच्ची की मौत की वजह भूख बताई जा रही है क्योंकि उसके परिवार का राशन कार्ड आधार लिंक नहीं होने की वजह से डीलर ने उन्हें राशन देना बंद कर दिया था। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
मोर बेटी कोनो नहीं हाथ रहे, जमाए से जमाए चाउर ना दे, कुछ नहीं रहे, भूखे में मोर बेटी कर रहे
यह आवाज कोयली देवी की है। वे बता रही हैं कि राशन नहीं मिलने की वजह से उनके घर के लोगों ने कई रातें भूखे गुजारी हैं। पिछली 28 सितंबर की रात जब उनकी 10 साल की बेटी संतोषी ने भात भात कहते हुए दम तोड़ दिया, तब भी उनके घर में चावल का एक दाना नहीं था। वे लोग 4 दिनों से चावल के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन गरीबी और नीची जाति के होने के कारण पड़ोसियों ने भी उन्हें उधार देने से कन्नी काट ली थी। भूख और जिंदगी की इस लड़ाई में ततः जीत भूख की हुई और भूखी संतोषी ने दम तोड़ दिया। जलडेगा निवासी सोशल एक्टिविस्ट तारामणि साहू ने बताया कि संतोषी के परिवार को आज तक राशन का चावल नहीं मिल सका है।
जो उसकी माँ ने हमें बताया है कि 28 तारीख को दोपहर से उसकी बच्ची की हालत बिगड़ रही थी और शाम को उसका जो पेट में दर्द होने लगा था, कि आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, आप उसको लेके खाना खिला दो, उसको भूख से उसका पेट तान जाए। चाय पत्ती थी जिसमें कि उस माँ ने नमक चाय पत्ती का चाय बनाया और बच्ची को पिलाया और रात को 10 बजे बच्ची की मौत।
सिमडेगा के उपायुक्त मंजुनाथ भजंतरी इससे इनकार करते हैं।
वहाँ जो है वो लड़की जो है
जी,
वहाँ इलाज रखती, वहाँ के एक आरएलपी डॉक्टर थे,
हाँ,
नारायण सिंह बोलकर
जी,
और जबकि वो बता रहे कि वो उसको मलेरिया थी।
अच्छा जी। दरअसल संतोषी के परिवार को पिछले 8 महीने से राशन नहीं मिला था क्योंकि उसका राशन कार्ड आधार लिंक नहीं था, जबकि झारखंड सरकार के प्रावधानों के मुताबिक ऐसा होना जरूरी है। उसके पिताजी मानसिक तौर पर बीमार हैं, लिहाजा कोई काम नहीं करते। घर का खर्च चलाने के लिए उसकी माँ और बड़ी बहन नीम के दातून बेचती है। इससे उनकी साप्ताहिक कमाई महज 80-90 रुपए है। इस कारण उसके घर के लोग अक्सर भूखे रह जाते हैं। झारखंड में भूख से हुई मौतों को लेकर हर बार विवाद होता है। सरकार कभी नहीं मानती कि किसी की मौत का कारण भूख है। संतोषी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और राइट टू फूड कैंपेन के बलराम कहते हैं कि अब सरकार को तय करना चाहिए कि भूख से मौत की परिभाषा क्या है।
ये कह रहा है कि इंटाइटलमेंट उसका नहीं मिला, राशन नहीं मिला और वो खाने के लिए उसके पास तो कुछ दूसरा कोपिंग मैकेनिज्म ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था
जी।
तो ऐसे स्थिति में अगर 4-5 दिन खाना नहीं मिले और उससे पहले भी बहुत इरेगुलर खाना मिले, ऐसे स्थिति में अगर कोई डेथ होती है
जी,
तो ये खुद बताए कि इसको क्या बोलेंगे। सरकार ही एक तय कर दे, WHO तय किया उसको मान लो, या आप भी एक प्रोटोकॉल तय कर दो कि ये होगा तो इसको हम स्टार्वेशन डेथ बोलेंगे।
बहरहाल संतोषी की मौत झारखंड के लिए न तो पहली घटना है और न आखिरी। जिंदगी से जद्दोजहद करते कई ऐसे परिवार आज भी गुजर काट रहे हैं। अभी प्रकाश, BBC रांची।
नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी 35 दिन तक भारत के 22 राज्यों में 11,000 किलोमीटर का सफर करते हुए सोमवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत यात्रा के दौरान उनके संगठन ने कई जगहों पर नारकीय स्थितियों में रह रहे बच्चों को सुरक्षित निकाला। इनमें भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति में धकेल दिए गए कई बच्चे और बच्चियां भी शामिल थे। ऐसे ही कुछ बच्चों से दिल्ली में हमारे सहयोगी अभिमन्यु साहा ने मुलाकात की। सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
दिल्ली के विश्व युवक केंद्र में बैठे लगभग 300 बच्चों को अब भी नहीं पता है कि उनका भविष्य क्या होगा। कन्याकुमारी से 11 सितंबर को शुरू की गई बचपन बचाओ यात्रा के दौरान बरामद किए गए इन बच्चों में गोवा के रेड लाइट एरिया से छुड़ाई गई 22 साल की एक युवती भी थी, जिसे महज 12 साल की उम्र में वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया था।
मेरे को 3 जगह में भेज दिया, जेवाड़ा, गोवा और मुंबई। बहुत सारे इंग्लिश वाला, तेलुगु वाला, कन्नड़ वाला, मलयाल वाला और बुड्ढा लोग बहुत सारे आती थी। इतना तकलीफ देती थी, हम लोग कुछ नहीं करेगा तो भी सिगरेट से जलाती थी।
हैदराबाद की रहने वाली इस बच्ची के जीवन की शुरुआत ही अंधकार से हुई थी। वो बताती हैं कि जन्म लेते ही उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। अनाथालय में पली बड़ी इस बच्ची का उस दिन अपहरण कर लिया गया था जब वो 7वीं कक्षा का रिजल्ट देखने स्कूल गई थी। कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की मदद से उसे गोवा के एक वेश्यालय से बरामद किया था। शारीरिक और मानसिक शोषण की वो अकेली शिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि वेश्यावृत्ति की काली दुनिया में कोई नाबालिग कदम रखती थी तो वो पहला शिकार पुलिस वालों की होती थी।
कोई भी नया लड़की आएगा तो पहला पुलिस वाला आते ही, और बड़ा बड़ा लोग रहते ना, वो लोग भी आते थे।
वेश्यावृत्ति में फंसी एक दूसरी लड़की ने बताया कि परिवार की गरीबी के कारण उन्हें घर वालों ने कमाने को मजबूर किया। वो कमाने के लिए जब शहर गईं तो एक अनजान महिला ने नौकरी देने का झांसा देकर उन्हें हैदराबाद के एक परिवार को बेच दिया।
उधर बेचने की बात मुझे ऐसा जगह पे बेचे जो बहुत बड़ा बिल्डिंग है और सबसे ऊपर का फ्लैट में, जिधर कोई आवाज़ नीचे तक नहीं पहुंचा सकते। बहुत लोग आते थे जाते थे, सबको रिक्वेस्ट करती थी, बोलती थी, लेकिन कोई मेरे बात नहीं सुनते थे।
कई महीनों के बाद उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया, लेकिन अब उनके परिवार ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया है। जीवन की काल कोठरियों से छूटी ये लड़कियां अब पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रही हैं और आगे जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे समाज उन पर गर्व कर सके। अभिमन्यु कुमार साहा, BBC दिल्ली।
झारखंड के धनबाद का झरिया बहुत तेजी से देश के मानचित्र से गायब होता जा रहा है। एक शताब्दी से भी ज्यादा वक्त से लगी भूमिगत आग अब झरिया शहर को ही निगल रही है। झारखंड सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब झरिया में रहना खतरनाक है। इस शहर को खाली करना ही होगा और लोगों को यहाँ से हटना ही होगा, मगर इस कोयलांचल के लोगों की जिंदगी कोयले की अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर है। तो सवाल यही है कि यहाँ के लोग जाएं तो कहाँ जाएं। सलमान रावी की खास रिपोर्ट।
चारों तरफ धूल, धुआं, आग और जहरीली गैसें, रह रहकर कोयले की ओपन कास्ट खदानों से विस्फोट की आवाजें, कुछ ऐसी ही हालत है धनबाद के झरिया की। इस अंधेरे में जिंदगियां काली हो रही हैं और एक शहर अपना अस्तित्व तलाश करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सैकड़ों वर्षों से कोयले में लगी आग अब शहरों को निगलने लगी है। इस आग में कई जिंदगियां भी खत्म हो रही हैं। अगस्त महीने में झरिया के बीचों बीच इंदिरा चौक पर बबलू खान और उनके पुत्र को जमीन ने निगल लिया। उनकी साली शहाना खातून का कहना है कि घटना के वक्त बबलू खान अपने बेटे के साथ बैठे हुए थे, तभी पूरी जमीन धस गई।
हम लोग के दरवाजे के पास जो है गोफ हुआ और हम लोग को छोड़ करके उधर का पीछे का आदमी को हटा दिया। हम लोग को ले जाके स्कूल में डाल दिए हैं। आके एक महीना से हम लोग स्कूल में रह रहे हैं।
झरिया के मोहरी बांध में तो देखते देखते एक पूरी बस्ती पाताल में समा गई। इस बस्ती का नाम और निशान इतनी जल्दी से मिट जाएगा किसी ने सोचा नहीं था, खास तौर पर जो लोग परिवार को पीछे छोड़कर काम करने के लिए बाहर गए हुए थे।
यहाँ से बराबर फोन जा रहा है कि मास्टर साहब भूदशान हो रहा है, ये फट गया, आपका घर एकदम फट गया। हम बोले कि मेरा घर फटा तो हमारा परिवार ठीक है कि नहीं? बोले हाँ, तेरा परिवार सब बचल हो तो सामान सब नीचे चल गया। इसके बाद मैं घटनाक्रम में देखा, मैं आया यहाँ पर तो मेरी जमीन जितनी जम संपत्ति थी सब नीचे चली गई है ना, सभी सामान पलंग सोफा।
शांति देवी अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी जिस वक्त जमीन हिलने लगी। उन्हें लगा कि जैसे कोई भूकंप आ गया है।
जमीन कटरा रहा था तो हम लोग खा बना रहे थे, सबको खिलाए पिलाए, देखा जमीन को इधर दराई फट रहा है तो अपना बच्चा लोग के सब निकालने की, चल बाहर निकालो हरिया बर्तन छोड़ दो।
बेघर लोगों के पास ना रहने की कोई जगह है और ना ही कोई सहारा। कुछ लोग तो मांग मांग कर अपना पेट भर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं भुवनेश्वर रवानी।
सब तो नीचे जमीन में चला, बर्तन कपड़े पहने वही पहने हुए, नहाने न खाने को ठीक है न रहने को ठीक है।
जमीन की आग की वजह से धनबाद और चंद्रपुरा के बीच ट्रेनों को बंद करना पड़ा है। इससे पहले धनबाद से पाथरडी तक की रेल लाइन को भी बंद करना पड़ा था। हालांकि स्थानीय लोगों को सरकार के इस कदम से साजिश की बू आ रही है। पेशे से वकील विजय झा कहते हैं,
कोयला निकालने की मंशा है और आग एक बहाना है और आग के नाम पर भयभीत करना चाहते हैं, जिससे लोग भयवश अपना घर द्वार मकान व्यापार छोड़कर पलायन कर जाएं और आसानी से कोयले को निकाला जा सके।
इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्पष्ट कर दिया है कि झरिया को खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी को खतरा है। तो क्या भूमिगत आग पर काबू पाना असंभव है? अगर नहीं तो फिर देरी क्यों? मगर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सेंटर फॉर माइंस एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक पीके सिंह कुछ चौंका देने वाली बातों का खुलासा करते हैं।
इन टोटलिटी फॉर ऑल द झरिया फायर,
अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लिए हमें किसी भी सक्षम एजेंसी से कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें ये कहा गया हो कि आपको आग के फैलने को रोकना होगा। अगर हमें कहा जाता है कि आप भूमिगत आग को फैलने से रोकने के प्रयासों का हिस्सा हैं तो हम इसके लिए सक्षम भी हैं और तैयार भी हैं।
कोयला कीमती है, इंसानी जिंदगियां भी। सरकारी महकमे को लगता है कि समस्या का समाधान झरिया के लोगों को हटाकर ही ढूंढा जा सकता है, मगर झरिया की आग की लपटें एक मरे हुए शहर की दास्तां हमेशा सुनाती रहेंगी। सलमान रावी, BBC झरिया।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
इराक के सरकारी सैन्य बलों के किरकुक शहर और आसपास के तेल उत्पादन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लेने के बाद अमेरिका ने इराक और कुर्दों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस लड़ाई में अमेरिका किसी का पक्ष नहीं लेगा। अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस बल का कहना है कि इस्लामिक स्टेट का गढ़ रहा रक्का अब उसके नियंत्रण में है। SDF के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के चंद दर्जन लड़ाके ही शहर में बचे हैं जो नेशनल हॉस्पिटल और स्टेडियम के पास के इलाके तक सीमित हैं। माल्टा में एक शक्तिशाली कार बम धमाके में एक महिला पत्रकार की मौत के बाद कई हजार लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यही समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया अजित सारथी ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।